أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے آپ تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں، ایک اہم ترین موضوع آپ کی خدمت میں ہم نے آج بیان کرنا ہے، اور وہ ہے مہدویت، عالمی نظام حکومت اور مہدویت کے خلاف ہونے والی عالمی سازشیں. مہدویت یعنی حضرت حجت امام عصر امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کا وہ نظام، وہ سسٹم جو عالم بشریت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، نہ کہ صرف امت اسلامیہ بلکہ عالم بشریت کی نجات کا اگر کوئی راستہ، کوئی سامان خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو وہ فقط اور فقط نظام ولایت ہے. آج کے عصر میں، زمانہ انتظار میں، زمانہ غیبت میں، زمانہ ظہور میں، اور امام عصر کے اس زمانے کے اندر، اسی ولایت کو مہدویت کہتے ہیں. مہدویت یا ولایت کوئی ایک الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہی ولایت، وہی سپرویژن جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو وہی سپرویژن، وہی ولایت حکم الہی سے اپنے خلیفہ بلا فصل جانشین حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، اور وہی سلسلہ چلتا ہوا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور پھر وہ سلسلہ ولایت و امامت، منصب امامت چلتا ہوا حضرت حجت امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی پاس آ پہنچا. امام عصر علیہ السلام کا یہ نظام میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بلا کسی تمہید کے. خداوند تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے مومنین سے، وہ یقیناً پورا ہو کے رہے گا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ روئے زمین پر مستضعفین جہاں کے لیے، مظلومین جہاں کے لیے ایک نجات کا نظام خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اسی نجات کے نظام کو مہدویت کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے جو عالم بشریت کو نجات دے سکے. جتنے بھی نظام دنیا میں اس وقت موجود ہیں، پہلے بن چکے ہیں، اس وقت موجود ہیں، جو آج تحلیل ہو چکے ہیں، جو آج موجود نہیں ہیں، جو ڈسٹروائے ہو چکے ہیں، لیکن اب آنے والے دور میں بھی جتنے نظام بنتے رہیں، انسان جتنے نظام بناتا رہے، لیکن ان نظاموں کے اندر خود بشر کی اپنی نجات نہیں ہے. بشر کی اگر کہیں پہ نجات ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ہے، اور وہ نظام ولایت ہے. اس نظام ولایت کو زمانہ انتظار میں، آج کے عصر میں، اسے نظام مہدویت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اے حبیب، اے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو مقرر کیا وہ کس لیے کیا؟ کہ جائیں اور جا کر لوگوں کو دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں رسول اللہ، اب انہوں نے اس دین کو غالب کرنا ہے، ليظهره على الدين كله، دین کا اظہار کرنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے. غالب ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا. مغلوب رہنے کے لیے یہ دین نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا دین نازل نہیں کیا جو اسلام مغلوب رہے اور دیگر ادیان اس کے اوپر غالب آ جائیں. نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام یا ایسا دین نافذ یا نازل نہیں فرمایا. نہ دین اللہ نے ایسا نازل فرمایا، نہ رسول اللہ نے ایسا دین نافذ کیا جس کے اندر غلبہ نہ ہو. دین کے اندر غلبہ ہے، دین کے مزاج کے اندر غلبہ ہے، دین کی ماہیت کے اندر غلبہ ہے، اور یہ غلبہ होकर रहेगा, वादा इलाही है। दीन इस्लाम के चार मराहिल हैं। पहले मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में चंद तमहीदी बातें करूंगा, और उसके बाद आलमी निज़ाम हुकूमत जो महदूदियत है उसके खिलाफ जो आज के ज़माने में साजिशें हो रही हैं उस हवाले से खुसूसन जवानान की खिदमत में चंद चीज़ें बयान करूँगा। अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम नाजिल किया ये है दीन इस्लाम, आइन कॉन्स्टिट्यूशन जो खुदा ने नाजिल किया वो इस्लाम है। इस्लाम वो दीन है जो तमाम अम्बिया इस्लाम लेकर आए हैं, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए वो तमाम के तमाम इस्लाम लेकर आए। इस्लाम के अलावा कोई भी दीन अम्बिया लेकर नहीं आए। हाँ शरीयतें हैं जो रासिख व मनसूख होती रहीं, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मौजू है, लेकिन वो एक अलग सिलसिला है कि फ़लाँ नबी के ऊपर फ़लाँ शरीयत थी, फिर वो रासिख थी, फिर वो मनसूख हुई, दूसरे नबी आए, तो वो शरीयत के अंदर अमिटमेंट होती रहीं, तरामीम होती रहीं। जिस तरह कानून के अंदर तरामीम होती हैं इसी तरह वो चंद तरामीम हैं, और मैं तरामीम का जुमला सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना अल्लाह ताला ने जो कानून नाजिल किया उसमें तरमीम नहीं है, बल्कि वो उम्मतों के हिसाब से, उम्मतों के दर्जों के हिसाब से, और उम्मतों के कौमों के नेशंस के लेवल के हिसाब से खुदावंद तबरक व तआला ने दीन दिया। लेवल के हिसाब से हज़रत नूह की उम्मत को उनके लेवल के हिसाब से दीन दिया, हज़रत इब्राहिम की उम्मत को उनके लेवल के मुताबिक, हज़रत मूसा की कौम को उनके लेवल के मुताबिक, हज़रत ईसा की कौम को उनके लेवल के मुताबिक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को, उम्मत को, उनके नेशन को उसकी लेवल के मुताबिक अल्लाह ताला ने दीन दिया। यानी दीन के मराहिल हैं, तदरीजन दीन परवान चढ़ा है, मराहिल के हिसाब से दीन नाजिल हुआ है। ऐसा नहीं है कि दीन अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, एक ही दीन है, लेकिन वो मराहिल में आया आदम अलैहिस्सलाम से लेके खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस यहाँ ये बात तय हुई कि इस्लाम तो एक ही है, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक एक ही दीन है इस्लाम, हर नबी इस्लाम लेकर आया। अब अम्बिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत हो गई, इख्तिताम नबूवत हुआ, लेकिन एक चीज़ याद रखें, अल्लाह ने इख्तिताम नबूवत किया है, ख़त्म नबूवत किया है, लेकिन इख्तिताम हिदायत नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह जब इस दुनिया से जाने लगे तो अल्लाह ने कहा कि अब इख्तिताम नबूवत के साथ साथ इख्तिताम हिदायत भी हुआ, नहीं, इख्तिताम हिदायत नहीं हुआ, इख्तिताम नबूवत हुआ, इख्तिताम हिदायत नहीं हुआ। हादी आएंगे, हिदायत जारी रहेगी, ता कयामत बशर की हिदायत होगी। तो वो दीन, वो अगर जब हादी है तो फिर हिदायत के लिए लोगों की भी ज़रूरत है, और लोग उम्मत है, कौमें हैं, नेशंस हैं, इंसान है, बनी नौ है, बशर है, ह्यूमंस हैं। अब खुदावंद तबरक व तआला का निज़ाम ये है कि दीन इस्लाम चार मराहिल में आया है, दीन के ये चार मराहिल या चार स्टेप्स आप इसको कह सकते हैं। इन चारों स्टेप्स को गौर से सुने। पहला मरहला है दीन इस्लाम का नुजूल दीन, दूसरा मरहला है इबलाग दीन, तीसरा मरहला है निफाज दीन, और चौथा है गलबा दीन। नुजूल दीन, दोबारा सुनिएगा, नुजूल दीन, इबलाग दीन, निफाज दीन और गलबा दीन, ये चार मराहिल। पहला मरहला नुजूल दीन, रसूलुल्लाह के कल्ब नूरानी पर दीन नाजिल हुआ, पूरा का पूरा नाजिल हो गया, कुरान जो आया पूरा का पूरा आ गया। अब उसके बाद दीन आएगा नहीं, रसूलुल्लाह पे इख्तिताम नबूवत भी हुआ और कुरान भी अब रसूलुल्लाह के बाद किसी के ऊपर नाजिल नहीं होगा। रसूलुल्लाह के कल्ब नूरानी पे पूरा का पूरा कुरान और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जो अल्लाह ताला की जानिब से वो नाजिल हो चुका। तो पहली चीज़ हो गई कि नुजूल दीन, नबी मुकर्रम पर दीन नाजिल हो चुका, पहला मरहला दीन का हो गया। दूसरा मरहला दीन इस्लाम का इबलाग दीन, इबलाग दीन रसूलुल्लाह के दौर में भी हुआ, बादे रसूल भी हुआ, और आज के असर में भी इबलाग दीन की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, पहले जो पहला मरहला जो है नुजूल दीन, उसके अंदर सिर्फ नबी को, नबी शामिल है, अम्बिया होंगे, इसमत होगी, यानी कि वहाँ से सिर्फ मासूम दीन ले सकता, बाकी अल्लाह के यहाँ से वही मसल नबी पर आएगी, नबी के अलावा वही किसी के ऊपर नहीं होंगे। तो इसीलिए पहला मरहला, पहले मरहले में नबी के साथ उम्मत शामिल नहीं है, दूसरे मरहले में नबी के साथ उम्मत भी शामिल होगी, आम पब्लिक भी शामिल होगी, मैं और आप भी शामिल होंगे, और वो है इबलाग दीन। इबलाग दीन जहाँ नबी ने करना है, जहाँ नबी ने दीन पहुँचाना है, वहाँ नबी के साथ उनके पैरोकारों ने भी, उम्मत ने भी, उनके फॉलोअर्स ने भी ये काम करना है कि जिस तक पैगाम पहुँचा वो आगे भी पहुँचाए, दीन को आगे भी पहुँचाए, यानी इबलाग दीन में उम्मत भी शामिल हो गई। तीसरा मरहला है निफाज दीन, ये तीसरा मरहला भी हुआ, रसूलुल्लाह ने मदीना के अंदर मदीना को कैपिटल बनाया और पूरी मदीना के अतराफ में पूरी इस्लामी कलमरौ कायम की और निफाज दीन किया, दीन को इम्प्लीमेंट करके बताया कि ये दीन है और इस तरह नाफिज होगा। तो अज़ान मोहतरम, ये चार तीन मराहिल तो हो चुके, یعنی نزول دین، دوسرا ابلاغ دین، وہ ہوا بھی اور جاری بھی ہے، اور تیسرا نفاذ دین، یہ ہوا بھی نفاذ دین اور ابھی بھی ہونا ہے، ہمیں بھی نافذ کرنا ہے اپنے زندگیوں کے اندر دین، اپنے وجود کے اوپر دین، اپنے ملک و قریہ و شہر میں دین نافذ کرنا ہے. تو تیسرا مرحلہ ہوا اور چل بھی رہا ہے، لیکن چوتھا مرحلہ وہ سب سے اہم ہے. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ نفاذ دین جب کسی سوسائٹی کے اندر، مسلم سوسائٹیز کے اندر جب نفاذ دین ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد چوتھا اور آخری مرحلہ بھی ہے، اور وہ ہے غلبہ دین، یعنی اب وہی دین غالب بھی ہوگا ان سوسائٹیز کے اندر بھی، وہ دین جائے گا جہاں اللہ رسول کے ماننے والے نہیں ہیں، جہاں خدا یکتا کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ مسلمان نہیں ہیں، اب وہاں بھی یہ دین جانا ہے، یہ غلبہ دین. اور اسی غلبہ دین کے لیے خداوند تبارک و تعالی کا مومنین سے وعدہ، اللہ کا وعدہ کہ خدا اس کو بھیجے گا جو آ کر دین کو غالب کرے گا. جب دین کے مزاج میں غلبہ ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سورہ توبہ کی آیت کہہ رہی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی یہ دین اظہار کرے گا، غالب ہوگا، تمام ادیان کے اوپر یہ دین غالب کرنا ہے. اے رسول، آپ نے یہ دین غالب کرنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے مشرقین کو ناگوار گزرے، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ کام کرنا. اب تین کام تو اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں، نزول دین، ابلاغ دین، حفاظ دین، یہ تین کام ہوئے ہیں. لیکن کیا ابھی تک، سوال یہ بنتا ہے امت اسلامیہ سے، کہ کیا ابھی تک دین غالب ہوا؟ نہیں ہوا، دیگر ادیان بھی دنیا میں نظر آتے ہیں. تو عقل کیا کہتی ہے، لاجک کیا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جب دین کے مزاج میں قرآن کی آیت، سورہ توبہ کی یہ 33 آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دین غالب ہوگا، تو جب دین کے مزاج میں غلبہ ہے تو کیسے غالب ہوگا، کون کرے گا؟ کوئی تو ہوگا جو آ کے کرے گا، کسی کو تو اللہ نے رکھا ہوگا جو آئے گا اور دین کو غالب کرے گا. تو عزیزان محترم، وہی رسول اللہ کا 12واں جانشین ہے، اللہ کے نبی کا وہ 12واں جانشین، 12واں خلیفہ جو آئے گا اور روئے زمین پہ دین کو نافذ کرے گا، اور اس 12ویں کا نام حضرت محمد مہدی اجل اللہ فرجہ شریف، وہ ہے رسول اللہ کا 12واں جانشین، وہ آئیں گے، انہوں نے آ کے دین کو غالب کرنا. یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دین غالب آئے گا، یہ 4 مراحل ہیں دین کے. اب ہم نیکسٹ سٹیپ میں آتے ہیں، اب ہم اگلے مرحلے میں آتے ہیں گفتگو کے، اور وہ یہ ہے، یہاں تک ہماری یہ بات سمجھ آئی کہ دین غالب آئے گا، دین کے مزاج کے اندر حکومت ہے، دین کے مزاج کے اندر غلبہ ہے، دین کے مزاج کے اندر، یعنی دین ایک جامع ہے، کامل ہے، اسلام ایک کامل دین ہے. اسلام کے اندر سیاست بھی ہے، اسلام کے اندر معیشت بھی ہے، اسلام کے اندر تجارت بھی ہے، اسلام کے اندر تعلیم بھی ہے، اسلام کے اندر تزکیہ بھی ہے، اسلام کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، اسلام کے اندر ہیومن ویلیوز بھی ہیں، اسلام کے اندر انڈیویجول لائف آپ نے کیسے گزارنی ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے، اور آپ نے معاشرتی زندگی شہر میں مثلا ایک انڈیویجول لائف، گھر کے اندر آپ نے پرسنل لائف کیسے گزارنی ہے، گھر میں کیسے آپ نے کن اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے، وہ بھی اسلام آپ کو بتائے گا. اور آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ کن اصولوں پہ چلے گا، یہ بھی اسلام بتاتا ہے. تو اس کا مطلب اسلام ایک جامع دین ہے، اسلام ایسا دین نہیں ہے، اسلام، معذرت کے ساتھ میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، اسلام معاذ اللہ لیاؤذ باللہ کوئی معذور دین نہیں ہے، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنا پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں ہے، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنا کوئی معیشتی سسٹم ہی نہیں ہے، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنا کوئی تعلیمی نظام ہی نہیں ہے، اسلام کے پاس اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام کے پاس اپنا تعلیمی نظام ہے، اسلام کے پاس اپنا معیشتی نظام ہے، اسلام کے پاس اپنا نظام زندگی ہے. اسلام نہ کارل مارکس کا محتاج ہے، اسلام نہ ایڈم اسمتھ کی تھیوری کا محتاج ہے، اسلام نہ کیپٹلزم کا محتاج ہے، اسلام نہ امپیرلزم کا محتاج ہے، اسلام نہ زیونزم کا محتاج ہے، اسلام نہ ڈکٹیٹرشپ کا محتاج ہے، اسلام کسی نظام کا، دنیا میں آج جتنے نظام ہیں اسلام ان کا محتاج نہیں ہے، اسلام خود ایک جامع اور مکمل دین ہے، خود ایک سسٹم اسلام اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسی سسٹم کو آج کے زمانے میں مہدویت کہتے ہیں. مہدویت، عالمی نظام حکومت الہی اللہ کی جانب سے. یہاں تک بات کلیئر ہوئی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ان مہدویت کے مثلا تین چیزیں اور سنیے گا. ایک ہے انتظار، اب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک ہے انتظار، ایک ہے غیبت، ایک ہے ظہور. تین الفاظ آپ نے سنے، اب ان کی وضاحت سنیے گا. انتظار یعنی ویٹنگ، انتظار کرنا، منتظر، جو میں اور آپ ہیں اپنے وقت کے امام کے، یہ ہوگا ہم ہیں منتظر، امام کا انتظار کریں. दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है गैबत, यानी इमाम नज़रों से ओझल है। कहाँ हैं? अल्लाह जानता है, लेकिन हैं, है ही हैं, मौजूद हैं। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हैं, मौजूद हैं, जिंदा हैं। अल्लाह ने उनको बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं और अल्लाह जानता है कि वो कहाँ है। दूसरी चीज़ ये हो गई गैबत, गैबत। तीसरी चीज़ वो हमें समझने की ज़रूरत है। एक हो गया इंतज़ार, एक हो गई गैबत, और अब जो तीसरी चीज़ है वो अहम तरीन है और वह है ज़हूर। अब इन तीनों चीज़ों की वजाहत सुने। गैबत यानी नज़रों के सामने नहीं है, ओझल, हमारी इन आँखों के सामने अभी मौजूद नहीं है गैबत। ज़हूर यानी जिस दिन इजहार हो जाएगा, जाहिर हो जाएंगे, आ जाएंगे, नजर आएंगे। ये हो गया ज़हूर। लेकिन ज़हूर के हवाले से एक और चीज़ सुने। ज़हूर उस दिन को कहते हैं, ज़हूर उस टाइम को कहते हैं, ज़हूर उस लम्हे को कहते हैं, ज़हूर उस टाइम पीरियड को कहते हैं इस्तिलाह दीन में, कि कुरान व अहले बैत की निगाह में, कि जिस दिन सिर्फ इमाम जाहिर नहीं होंगे, वो इमाम आने के बाद अल्लाह के दीन को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर देंगे, उस दिन को ज़हूर कहते हैं। ये दो चीज़ें हो गई, गैबत और ज़हूर। तीसरी चीज़ है इंतज़ार। इंतज़ार यानी मुंतज़िर। अब इंतज़ार का ताल्लुक है मुझसे और आपसे। ज़हूर कब होगा? अल्लाह जानता है, मैं और आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता। अल्लाह जानता है ज़हूर कब होगा। ठीक है, अब ज़हूर के बारे में हम मतलब ये तय ना करें कि इस दिन ज़हूर हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा, नहीं, वो तो अल्लाह जानता है। दूसरी चीज़ गैबत, वो अल्लाह की जानिब से, वो भी हमें नहीं मालूम, वो भी खुदा जानता है। तीसरी चीज़ है इंतज़ार। इसका ताल्लुक हमसे, मुझसे और आपसे है कि इंतज़ार हमने करना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सबसे बेहतरीन अमल, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन अमल जो इस दौर में होगा वो है इंतज़ारुल फरज, यानी इंतज़ार करना, अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार। लेकिन ये कौन सा इंतज़ार है या रसूल अल्लाह, हम कौन सा इंतज़ार करें? हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, इमाम खुद आ जाएंगे, ये इंतज़ार नहीं। बल्कि इंतज़ार ये कि आप अपने आप को, आप अपने घर को, आप अपने किरदार को, आप अपने वजूद को, आप अपने घर को, आप अपनी औलाद को, आप अपनी सोसाइटी को, आप अपने मुआशरे को, आप अपने करिया करिया गली महल्ले और मुल्क को इस काबिल, अपनी सरजमीन को इस काबिल बना लो कि फिर इमाम आए और आपकी ज़मीन पे जब इमाम आए तो वो इमाम कैद ना हो जाए। जालिम तो मौजूद हैं, जालिम तो चाहेंगे, जालिम तो आज भी हैं, जो जालिम तो चाहते हैं कि वो ना आए, जालिम तो चाहते हैं कि उन, और अगर आ गए, ऐसे दौर में इमाम आ गए तो क्या होगा? उनको शहीद कर दिया जाएगा, जैसे 11 इमामों को शहीद किया गया, उनको असीर किया जाएगा, उनको कैद किया जाएगा। तो इसलिए ऐसे माहौल में अल्लाह नहीं भेजेगा, बल्कि अब अल्लाह 12वें को उस माहौल में भेजेगा जब तमाम सरजमीनों पर, तमाम सरजमीनों पर जानिसारान महदी तैयार होंगे। लफ्जी नहीं, मेरे जैसे लफ्जी नहीं, बल्कि बाअमल, बाकिरदार, ऐसे जो वाकई हजरत हुज्जत के जहूर के लिए ज़मीना साजी अपनी ज़मीनों पे करें। अब बाज़ लोग सवाल करते हैं, जैसे जहन में आपके भी सवाल उठ सकता है सामईन के, कि जी क्या 313 नहीं हुए अभी तक ईरान में, इराक में, इतनी ज़मीनों में, क्या 313 नहीं हुए? बात 313 की नहीं है। 313 एक मखसूस, वो एक अलग रिवायत है, वो एक अलग मुख्तस है, वो 313 वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बात यह है कि उन 313 के अलावा एक आम जो हमने चीज़ सोचनी है वो ये है कि बात 313 की नहीं है, बात यह है कि मैंने और आपने अपने आप को, अपनी ज़मीनों को तैयार करना है। क्योंकि अगर हम अपनी ज़मीनें तैयार नहीं करेंगे तो फिर वो 313 भी इमाम के शहीद कर दिए जाएंगे, वो जो 313 खास होंगे वो भी शहीद हो जाएंगे। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जालिम ताकतवर अगर होगा, बातिल अगर ताकतवर होगा, तो बातिल के ताकतवर होने के दरमियान में खुदा नहीं भेजेगा। क्योंकि 11 इमामों के दौर में बातिल ताकतवर था, तो देखें 11 इमामों के साथ क्या हुआ। तो अब 12वें को खुदा ऐसे माहौल में नहीं भेजेगा। बहरहाल हमें यही समझने की जरूरत है, 12वें को खुदा कब भेजेगा? जब हक को बातिल 50-50 होगा। इस लॉजिक को समझे जरा, ज़हूर की इस नजरिए को समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे। जब हक भी 50%, मैं मिसाल दे रहा हूँ 50%, जब हक भी 50%, हक वाले भी 50% मैदान अमल में, बातिल वाले भी 50% मैदान अमल में, दोनों बराबर के कवि होंगे, तो फिर खुदा 12वें को भेजेगा। और बेइज़्निल्लाह, मदद अल्लाह से, अल्लाह की मदद से, फिर वो 12वां हक के लश्कर को बातिल पे गालिब कर देगा। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ये आयत, आयत तब मुकम्मल होगी, यानी कि जब 50% हक 50% बातिल दोनों मैदान में होंगे तो फिर आएंगे इमाम। हमने ये समझना है, ये अपनी जमीनों के लिए हमने ये समझना है कि आया। अब इस लॉजिक को जरा सोचें कि क्या मेरी अपनी जमीन, हम पाकिस्तान है, अहले पाकिस्तान है, क्या हमारी पाकिस्तान, हमारी अपनी जमीन पर पाकिस्तान में हम इमाम को बुला रहे हैं, अल अजल या मौला कह रहे हैं, तो क्या 50% मिसाल के तौर पर अगर 50% बातिल मजबूत है हमारी जमीन पे, तो क्या 50% हक मजबूत है? हम इतने मजबूतों के मैदान में हैं इस वक्त 50% जो अल अजल या इमाम कह के उनको कह रहे हैं कि बस आप आ जाए? नहीं, अल अजल का मतलब, अल अजल कहना है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि अल अजल नहीं कहना, अल अजल कहना है, अल अजल दुआ है कि जल्दी कीजिए, लेकिन अल अजल जबान से कह के अपने आप को और अपने औलाद को, अपने किरदारों को मैदान अमल में उतारना, ये हकीकी अल अजल। अब अजीजान मोहतरम, बस मैं आखिर में चंद चीज़ें और अर्ज करूँगा कि देखें, ये तो हो गई सारी बातें कि जहूर कैसे होगा, क्या होगा, महदवियत आलमी निज़ाम हुकूमत, महदवियत के अंदर रुकावट क्या है? आलमी साजिश को समझें, दुनिया में इस वक्त जो सबसे खतरनाक साजिश जो मौजूद है, जो हजरत हुज्जत की दुश्मन है, ये लोग नहीं चाहते कि इमाम महदी आए। तशय्यो इस मसले को समझे, गौर से समझे। वो सबसे बड़ा मसला आज दुनिया के अंदर ये है कि मुसलमानों और बिलखसूस तशय्यो के अंदर से रूहानियत निकाली जा रही है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी निकाली जा रही है आपकी, और वो निकालने के लिए एक नज़रिया दुनिया के अंदर वजूद में आया हुआ है। उस नज़रिए का नाम है एल्यूमिनाटी नज़रिया, एल्यूमिनाटी, आप जाके गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। एल्यूमिनाटी का मैं दीन की ज़बान में इस्तेलाह में तर्जुमा करूँ तो उसका तर्जुमा बनता है, एल्यूमिनाटी का सादा सा तर्जुमा बनता है दज्जालियत, दज्जालियत शैतान परस्ती। एल्यूमिनाटी बाकायदा एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है, एक खुफिया तंजीम है, एक खुफिया हाथ है जो दुनिया को चला रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं ना आलमी इस्टेब्लिशमेंट, मसलन अमरीका, इसराइल और ये जितनी भी हुकूमतें हैं, तरक्की पजी तरक्की याफ्ता ममालिक, यूरोपीय कंट्रीज, यूएन, यूनाइटेड नेशन, आप क्या समझते हैं यूएन में जो फैसले हो रहे हैं, क्या आप क्या समझते हैं ये जो जाहिरी तौर पर फैसले हो रहे हैं, क्या वही यूएन ही इस दुनिया को चला रहा है? नहीं, इसके पीछे एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो है एल्यूमिनाटी। क्या है ये एल्यूमिनाटी, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर जाके गूगल के ऊपर, कि एल्यूमिनाटी ये नजरिए की प्रमोशन के लिए आज से 250 साल पहले एक किताब लिखी थी, द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन। इस किताब के अंदर पूरी प्रमोशंस बताई हैं कि हम किस किस तरह दुनिया के अंदर, आज से 250 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। ये कौन है, ये ज़ायनिस्ट है, असल में ज़ायनिस्ट से होनी 250 साल पहले इनकी प्लानिंग हुई थी। यहूदियों के अंदर ज़ायनिस्ट मौजूद हैं, उनकी प्लानिंग हुई थी। तमाम यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है, ज़ायनिस्ट और हैं और ज्यूइश और हैं, ये फ़र्क भी जो है हमें पहचानना चाहिए। बहरहाल एल्यूमिनाटी नज़रिया, एल्यूमिनाटी दज्जालियत है, दज्जाली। अब मैं इसके बारे में मुख्तसर सा बस आपकी खिदमत में बताऊँगा कि देखें, ये आज ये दुनिया में आपको बहुत सारे नारे नज़र आ रहे हैं, मसलन LGBT फेमिनिज़म मार्च 8 मार्च को होता है, LGBT फेमिनिज्म मार्च, इसके अलावा ट्रांसजेंडर, ट्रांस स्पेशिस, होमोसेक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इन सारी चीज़ों के पीछे, इसकी प्रमोशन के पीछे एल्यूमिनाटी नज़रिया। एल्यूमिनाटी नज़रिए के अंदर कौन है, दुनिया के बड़े बड़े रिचेस्ट मैन हैं, यानी मैं दावे से नहीं कहता लेकिन आप ये खुफिया लोग हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं नाम लेके ये, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बिल्कुल हतमन है, लेकिन ऐसा हो सकता, बिल गेट्स है, एलोन मास्क है, दुनिया के बड़े बड़े रिचेस्ट मैन, मुकेश अंबानी है, दीगर बड़े बड़े दुनिया के रिचेस्ट मैन जो इस वक्त हैं, वो इस नजरिए की प्रमोशन कर रहे हैं एल्यूमिनाटी। एल्यूमिनाटी की मैं आज एक इस्तेलाह आपको बयान करता हूँ कि आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, अमेरिकन सदर जो था, इसके दौर में एक नारा लगा था, वन वर्ल्ड ऑर्डर। ये क्या है, ये एल्यूमिनाटी नजरिए की प्रमोशन। ये नारा ट्रंप का नहीं है, ये नारा जो बाइडन का नहीं है, ये नारा नेतन्याहू का नहीं है, ये नारा पीछे से एल्यूमिनाटी ग्रुप का है। एल्यूमिनाटी कौन लोग हैं, ये खुफिया हैं, ये सारी ये चला रहे हैं, मसलन दुनिया पावर इनके पास मौजूद है, आज दुनिया की बिजनेस इनके पास है बड़ा, मसलन ये जो ब्लैक रॉक अमेरिकन कंपनी है बिजनेस के हवाले से, या ब्लैक वाटर अमेरिकन कंपनी हो गई, इस तरह और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हो गई, इसके तमाम के तमाम जो आप तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, जब आप ऊपर जाएंगे तो तमाम ताने के ताने बाने इसके जाके मिल रहे होंगे एल्यूमिनाटी। एल्यूमिनाटी नजरी की प्रमोशन के लिए एक कार्टून भी इन्होंने बनाया, आज नहीं बनाया, पहले बनाया था, और कई कार्टून बनाए, लेकिन मैं एक कार्टून का हवाला देता हूँ, आईपैड गॉड। आईपैड गॉड के अंदर इन्होंने दिखाया कि एक पालतू बकरी है जो पिंजरे के अंदर कैद है, और 666 का लोगो उसके ऊपर माथे के ऊपर बना हुआ है, और वो पिंजरे के अंदर कैद है। फिर उसके बाद दो हाथ दिखाएं, दो हाथ ऐसे दिखाएं, एक हाथ के अंदर खून है, एक हाथ के अंदर डॉलर है। फिर उसके बाद अमेरिकन सुदूर, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो गुजर चुके, बुश, ओबामा, और वो क्योंकि कार्टून पहले बना था तो वो तमाम अमेरिकन सुदूर दिखाए कि वो चल रहे हैं और उनकी डोर पीछे से किसी और के हाथ में, वो पपेट है, वो कठपुतली है, उनकी डोर पीछे से किसी और के हाथ में। और हकीकता ऐसा है, ये अमेरिकन सुदूर भी जो आते हैं, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट लाती है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट सुदूर लाती है अमेरिका के, फिर वो फैसला करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, अपनी धौंस जमाते हैं, फैसला करते हैं, और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं वो एल्यूमिनाटी नज़रिए के प्रमोशन वाले हैं, एल्यूमिनाटी नज़रिए रखने वाले लोग हैं, उसके मोतकिद लोग हैं। इसी तरह इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, इसी तरह और दुनिया की जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर मौजूद हैं ये लोग। उसके अंदर ये दिखाया कि अमेरिकन सुदूर जो है वो उनको कठपुतली और उनकी डोर किसी और के हाथ में। फिर उस कार्टून के अंदर ये दिखाया कि ओबा मसलन मुसलमानों को भी दिखाया। फिर उस कार्टून के अंदर ईसाइयों को दिखाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी माज़ अल्लाह ये बताया कि वो भी उस हाथ के कंट्रोल में होंगे, वो एक हाथ है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, वो दुनिया की करेंसी भी कंट्रोल कर रहा है, वो दुनिया के अंदर जो है वो बदअमनी भी फैला सकता है, वो दुनिया के अंदर खून रेजी भी कर सकता है अगर कोई उसकी बात नहीं माने, वो दुनिया के अंदर जंगो जिदाल भी कर रहा है वो हाथ, और वो दुनिया के अंदर अमन भी वो हाथ कर सकता है। यानी एक ऐसा हाथ दिखाया है कि माज़ अल्लाह मैं ये बयान कर रहा हूँ, लेकिन उनका कहना यही है कि ये एक शैतान का हाथ है, और शैतान सबसे बड़ी दुनिया की पावर है, अल्लाह के मुकाबले में ये हाथ है जो इन्होंने बनाया है एल्यूमिनाटी। बहरहाल ये आईपैड गॉड के अंदर बहुत कुछ दिखाया गया है, इसको आप देखें ताकि हमें पता चले कि आज हम किस ज़माने में जी रहे हैं और दुश्मनान महदवियत क्या कर रहे हैं। फिर उस आईपैड गॉड कार्टून के अंदर, आईपैड गॉड में पालतू बकरी हुई कार्टून, फिर उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें बाहर दिखाई गई, लेकिन बस मैं इतना बयान करूँगा कि उसके अंदर जो ये चीज़ें दिखाई गई वो सारी आज इम्प्लीमेंट हो रही हैं। वो जो बकरी दिखाई थी वो बकरी नहीं थी, असल में इंसान है, और इंसान के जो माथे पे चिप दिखाई गई वो 666 लोगो जो दिखाया गया, चिप जो लगी हुई है बकरी के माथे पर, वो इंसान बनाए जाएंगे जिनके माइंड के अंदर, जिनके वजूद में चिप्स डाली जाएंगी, और आज ये काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा, वो बकरी पिंजरे में, यानी इंसान हमारे कंट्रोल में होगा, ह्यूमन हमारे कंट्रोल में होंगे, उसे एक हाथ के कंट्रोल में ह्यूमन होंगे, ये सारा दिखाया गया। अब ये आर्टिफिशियल, ये जो इंसान दिखाए गए ये बनेंगे कहाँ, तो मैं आपको एक हवाला देता हूँ। जर्मनी का शहर है, कैपिटल है जर्मनी का बर्लिन, बर्लिन के अंदर एक बायोलॉजिस्ट ने, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने आर्टिफिशियल वॉर्म तैयार किए हैं। आर्टिफिशियल वॉर्म, मसनूई हमल, माँ के मसनूई हमल, माँ के मसनूई शिकम हमल, उसके अंदर उन्होंने टेस्ट ट्यूब से जो है वो स्पर्म जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। वो उससे बायोलॉजिस्ट से पूछा गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट से पूछा गया, ये आपने क्यों बनाया है, तो कहने लगा हम दुनिया में जिन ममालिक के अंदर आबादी कम है उनको हम बच्चे यहाँ से पैदा करके बना के देंगे, इंसानों की आबादी उन ममालिक में हम बढ़ाएंगे। अब ये तो ज़ाहरी तौर पे बड़ा अच्छा काम नज़र आ रहा है कि ह्यूमन की खिदमत, इंसानों की खिदमत, खिदमत खल्क है, लेकिन नहीं, पीछे नज़रिया कुछ और है, हदफ कुछ और है, और हदफ ये है कि इन्होंने इसलिए नहीं बनाया ये कि जो है ये इंसानों की खिदमत करेंगे, बल्कि इन्होंने इसलिए बनाया है कि असल में ये मसनूई माँ के रहम के अंदर स्पर्म मुंतकिल करके डाल के बच्चे बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, इंसान, उन नुतफों से इंसान तैयार करेंगे, और उन इंसानों की पैदाइश के अंदर जब ये तैयार हो रहे होंगे तो चिप्स डालेंगे, वो सेमीकंडक्टर चिप्स डाली जाएंगी, माइंड के अंदर डालें या जहाँ भी डालें, बहरहाल ये इनकी प्लानिंग है। फिर उसका माइंड सेट इंसान का ये कंट्रोल करेंगे, वो इंसान दुनिया के अंदर जवान होकर घूमेंगे मेरे और आपकी तरह, ये इनकी प्लानिंग है, लेकिन कंट्रोल जो है वो हाथ कर रहा होगा, एल्यूमिनाटी कंट्रोल वो कर रहा होगा। ये एक दिखा, बहरहाल इनकी जो है वो प्लानिंग है। दूसरा, इंसानी माइंड कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक और चीज़ का सहारा लिया है, वो बिल्कुल आसानी से कंट्रोल हो रहा है इंसानी माइंड, और वो है मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरीके से इंसानी माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। और आपके सामने आलमी मीडिया, दुनिया का जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया किसके हाथ में है? सब कहेंगे अमेरिका के हाथ में। अमेरिका किसके हाथ में है? अपनी स्टैब्लिशमेंट के हाथ में। उनकी स्टैब्लिशमेंट किसके हाथ में है? अमेरिका की, एल्यूमिनाटी के हाथ में। तो ये इस तरह जाके ताने बाने जोड़ रहे हैं। जो आज आप देख रहे हैं कि मुस्लिम मुआशरों के अंदर ये कभी औरतों को कहते हैं तुम्हारे हुकूक के लिए हम फेमिनिज्म मार्च लाएं, वो फेमिनिज्म मार्च औरतों के हुकूक के लिए नहीं है। कनिजान जहरा, कनिजान जैनब, महदवी पैरोकार औरतों को उरिया करने के लिए है, मुसलमान औरतों को उरिया करने के लिए, ताकि इनकी गोद में मेहदी के नासिर ना पले। गोद नापाक होगी तो नासिरान मेहदी तैयार नहीं होंगे, माँ पाकीजा होगी तो यकीन नासिरान मेहदी तैयार होंगे। लेकिन वो जानते हैं, माजर के साथ हम इन चीजों पे तवज्जो नहीं दे रहे, वो जानते हैं, दुश्मन जानता है, दुश्मन बेदार है, दुश्मन गाफिल नहीं है। हम गफलत में पड़े हुए हैं, माजरत के साथ इंतहाई, लेकिन हम गफलत में पड़े। बहरहाल वो अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ महदवी जवानों की जिम्मेदारी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी, हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं नजरिया महदवियत की तबलीग करें। आप एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट के जरिए से आप, अब अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो अपने लिए रोल मॉडल आप किसको बनाएंगे? अपने लिए रोल मॉडल इन मगरबियों को नहीं बनाए सोशल एक्टिविस्ट बन के, आपके लिए रोल मॉडल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके लिए रोल मॉडल मासूमीन अलैहिस्सलाम। तो इसलिए आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आप जाके काम करें, लेकिन उस सोशल एक्टिविटी के साथ साथ नजरिया महदवियत की तबलीग, प्रीच, तबलीग। आप लिख सकते हैं बेहतरीन, आप लिखते हैं तो आप, लेकिन कलम के जरिए, अपने कलम को इमाम महदी के लिए इस्तेमाल करें, अपनी जबान को इमाम महदी के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों को इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ कर दें, अपने वजूद को इमाम महदी के लिए वक्फ करें, अपनी तमाम तर तमन्नाइयों को, अपने इल्म को, अपनी महारतों को, अपनी सलाहियतों को, अपने मसल, अपने कलम को आप लिखना जानते हैं, अपने कलम को इमाम महदी के लिए वक्फ करें। आप सोशल मीडिया अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं, अपने इस काम को अपने वक्त के इमाम के लिए, इमाम महदी के लिए वक्फ करें। मैं अजीज जवानों से अर्ज कर रहा हूँ कि आपने अपने हर काम को नियत ये करनी है कि मैं अपने मौलाओं आका हजरत हुज्जत के लिए कर रहा हूँ, उनके जहूर के लिए कर रहा हूँ। मैं अगर एक मैसेज, मैं अगर एक वीडियो भी बना रहा हूँ किसी पैगाम देने के लिए, तो उसके अंदर भी मेरे लिए इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए मैंने काम करना है, उनके लिए वक्फ करना है। तो अजीज़ान मोहतरम, आप इन चीज़ों को देखें, दुश्मन किस तरह बेदार है, हमें भी बेदार होकर अपने उमूर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें हकीकतन इमाम महदी अलैहिस्सलाम का पैरोकार बनाए और हमें हकीकतन हज़रत हुज्जत की राह को हमवार करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।